नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सभी हुसैन। सभी स्वागत है आपका।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे दिन का खेल जारी। विंबलडन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में यानिक सिन्नर और कार्लोस अल्काराज आमने सामने। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चौथे चरण में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने भारत को 3 पदक दिलाए और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा गुजरात के गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के चौथे दिन का खेल जारी है। इंग्लैंड ने आज दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक टी ब्रेक तक 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड के लिए अभी बेन स्ट्रोक 27 और क्रिस वोक्स 8 रन बनाकर के खेल रहे थे। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने और वाशिंगटन सुंदर ने दो दो विकेट लिए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने एक एक विकेट हासिल किया। पहली पारी में इंग्लैंड के 387 रन के जवाब में कल भारत की पहली पारी 387 रन के ही स्कोर पर सिमट गई। तो सभी यहीं से शुरू करते हैं, चौथे दिन का खेल है और जिस तरह जहां पे कल का खेल खत्म हुआ वो आखिरी एक ओवर मैच एकदम अपने रोमांच पर है।
बिल्कुल ये सही कहा, क्योंकि हमने देखा कि आखिरी के ओवर में जो लास्ट का एक ओवर था, जैक क्रॉली जिस तरीके से मतलब कि चाह रहे थे कि दूसरा ओवर ना उनको खेलना पड़े और जिस तरीके से वो जसप्रीत बुमराह के सामने बिल्कुल जैसे हम देख रहे थे कि इतनी प्रोबिंग लाइन डाल रहे थे जसप्रीत बुमराह और उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे, कि अटैक करे, डिफेंड करे, कैसे खेले। तो वो है ना, जैसे पहले उन्होंने गार्ड लेने में 90 सेकेंड्स का समय ले लिया, उसके बाद उन्होंने है ना मेडिकल टाइम आउट ले लिया। तो वो जो कल जो गहमा गहमी हुई पूरी इंडियन टीम और जैक क्रॉली और बेन डकेट के बीच, और जिस तरीके से शुभमन गिल ने काफी सारे है ना जो ऐसे काफी सारी जो एक्सचेंजेस हुई, वर्ड्स की जो एक्सचेंजेस हुई, उससे है ना मुझे लगता है कि ये मैच ही नहीं, पूरी श्रृंखला जो आगे आने वाले दो टेस्ट मैच भी है उनका भी है ना मतलब कि एक बहुत ही एक गर्मा गर्म गर्मा जैसे माहौल हो गया है और काफी जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ही रोमांच रहेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि आगे आने वाली सीरीज में भी है ना मुझे लगता है कि काफी ये वर्बल ड्यूल भी होता रहेगा। और आज का खेल की अगर हम बात करें 175 पे 6 है टी ब्रेक तक इंग्लैंड। वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो दो क्रूशियल विकेट्स निकाले जो रूट के, और उन्होंने जेमी स्मिथ को आउट किया, तो ये दो क्रूशियल विकेट्स उन्होंने निकाल के अपनी टीम को जो एक सपोर्ट दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर एक्सपेक्टेशन रहती है बुमराह से वो निकाले या बीच की स्पेल में ना सिराज निकाले, लेकिन जो वाशिंगटन सुंदर ने एक जो दबाव बनाया दूसरे छोर से, और कहीं ना कहीं उन्होंने रविंद्र जडेजा का भी थोड़ी सी राहत पहुंचाई, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी ये होता है कि एक स्पेशली स्पिनर की तरह लगातार बॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन यहां पर वाशिंगटन सुंदर ने जो दो क्रूशियल ये ब्रेक थ्रू अचीव किया और उससे है ना गेम बिल्कुल खुल गया 175 पे 6। यहीं पर अगर हम अगले 50 रन में अगर इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर देते हैं तो भारत के पास 225-30 रन का लक्ष्य रहेगा, जो कि काफी अचीवेबल लक्ष्य, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है और इंग्लैंड की जहां हमने देखा है कि गेंदबाज इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं भारत के बल्लेबाजों के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि यहां 175 पे 6 है, 50 रन और ज्यादा बनाने दिया जाए इंग्लैंड को अगर, और किसी भी तरीके से 220-30 तक उनकी पारी समाप्त करे ताकि ये विक्ट्री टारगेट फिर इंडिया को मिले, क्योंकि चौथी पारी में खेलना हमेशा दबाव भी रहता है और थोड़ा सा पिच भी अभी स्पिनर्स को भी मदद दे रहा है, क्रैक्स भी पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा भारत नहीं चाहेगा कि उनको ज्यादा बड़ा स्कोर को चेस करना पड़े।
जी बिल्कुल, जिस तरह की आज के खेल की बात की जाए बिल्कुल स्वाभाविक है कि भारत कम से स्कोर पर यहाँ पे रोकना चाहेगा इंग्लैंड की पारी को, ताकि चौथी पारी में भारत को बहुत लंबे समय तक बल्लेबाजी ना करनी पड़े। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत ने श्रृंखला 3-2 से अपने नाम कर ली। पांचवें मैच में भारत के लिए शैफाली वर्मा ने 73 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 167 रन बनाए और इंग्लैंड ने हालांकि 5 विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली। इसके बाद भारत की अभी 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला होनी है जो कि 16 जुलाई से शुरू होगी। ये पूरा का पूरा दौरा भारत के लिए जिस तरह से रहा है भारतीय महिला टीम का, बल्लेबाजी तो भारत की हमेशा से मजबूत पक्ष रहा, गेंदबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस यहां से देखने को मिली है भारत की, इसको किस तरह से देखा जाए?
नहीं, ये बिल्कुल एक तो बहुत बड़ी सफलता है भारत की महिला क्रिकेट टीम की। और जैसा हमने कहा भी कि हरमनप्रीत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जब ये भारत ने श्रृंखला जीत ली थी, जब यानी 3-1 से जब आगे हो गई थी, अनएसाइबल लीड ले ली थी, तब उन्होंने ना विमेंस प्रीमियर लीग को बहुत बड़ा क्रेडिट दिया था। और उन्होंने कहा था कि WPL की वजह से ये जो हर एक खिलाड़ी के जो खेल में एक निखार आया है और जो एक्सपोजर मिला है उनको, क्योंकि बाहर से खिलाड़ी आके यहाँ पे खेलते हैं WPL, और इससे है ना हमारे को जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता चलती है, जो आगे जो ऐसे बायलेटरल सीरीज होते हैं, टूर्स होते हैं, उसमें हम प्लान करने में बहुत है ना इसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है। और ये हमने देखा कि इस सीरीज में, क्योंकि पहली बार हुआ है कि है ना भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पर हराया है महिला क्रिकेट में, और ये वाकई ही एक बहुत उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि उनका मनोबल इसलिए भी बढ़ाएगा क्योंकि भारत ODI वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, जो इस साल भारत होस्ट कर रहा है, और अगले साल T20 वर्ल्ड कप है इंग्लैंड एंड वेल्स में। तो इस तरीके की श्रृंखला जो जीती है भारत ने, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा, और आगे वाले वाली जो अभी ये जो एक दिवसीय श्रृंखला है जो 3 मैचों की, उसमें भी भारत एक मजबूत जिसे कहते हैं टीम बन के उतरेगा।
जी बिल्कुल, ये दौरा इस नज़र से भी काफ़ी अहम है कि भारत अगले साल इन्हीं मैदानों पर T20 विश्व कप खेलेगी भारतीय महिला टीम, तो उस दृष्टिकोण से ये पूरी जो श्रृंखला है बेहद अहम हो जाती है। और अब बात टेनिस की। विंबलडन 2025 के पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज कुछ ही देर में आमने सामने होंगे। ये फाइनल आधुनिक टेनिस के सबसे रोमांचक युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है, जहां जोकोविच, नाडाल, फेडरर के युग के बाद अल्काराज और सिनर जैसे युवा सितारे टेनिस के आसमान पर छाने को तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
सिनर और अल्काराज ने सेमीफाइनल मुकाबलों में अपने अपने विरोधियों को मात देकर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाई है, बल्कि इस मुकाबले को नई पीढ़ी की प्रतिद्वंदिता में बदल दिया है। आंकड़े, प्रदर्शन और हौसले को देखते हुए यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि आज ऑल इंग्लैंड क्लब के सेंटर कोर्ट पर पुरुष सिंगल्स का खिताब कौन अपने नाम करेगा। अल्काराज और सिनर ने पिछले 8 ग्रैंड स्लैम खिताबों में से 7 जीते हैं। गत विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्काराज का उनके आमने सामने के रिकॉर्ड में 8-4 का रिकॉर्ड है, और उन्होंने पिछले 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है। 22 वर्षीय अल्काराज ने लगातार 24 मैच जीते हैं, वहीं 23 वर्षीय यानिक सिनर वर्तमान में विश्व नंबर 1 हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है, और सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज को हराने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि आज दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों को एक रोमांचक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं कल खेले गए महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में पोलैंड की इगा स्वायतेक ने अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को 6-0, 6-0 से एक तरफा हरा कर अपने करियर का पहला विंबलडन और 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। स्वायतेक ने 57 मिनट चले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की, जो ओपन एरा में 6-0, 6-0 से ग्रैंड स्लैम एकल फाइनल में उनका दूसरा मैच था। ओपन एरा में पोलैंड की ओर से पहले विंबलडन एकल चैंपियन बनने के अलावा यह जीत स्वायतेक के करियर की 100वीं ग्रैंड स्लैम मैच जीत भी है। इसके साथ ही ब्रिटेन के जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल ने पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। 1936 के बाद विंबलडन का खिताब जीतने वाली यह पहली ब्रिटिश जोड़ी है। जूलियन और ग्लासपूल ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाटा और नीदरलैंड के डेविड पेल को 6-2, 7-6 से पराजित किया। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
टेनिस के एक पूरे नए युग की शुरुआत यहां से कही जा सकती है, जिस तरह का आज का फाइनल है, दोनों नए खिलाड़ी, और कितना कांटे का टक्कर, जो कि कल का जो फाइनल रहा वो थोड़ा सा हमें लगता है कि बतौर दर्शक निराश करने वाला था, कि एक तरफा मुकाबला निकला।
बिल्कुल, जैसे है ना कल का मतलब कि वाकई निराश तो किया, क्योंकि एमिनिसोवा जो है वो जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में सबलंका को हराया था, और जिस तरीके से उनसे एक उम्मीद बंधी थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्लेयर को हराया था, और उससे ये लग रहा था कि यह है कि विंबलडन फाइनल जो होगा कांटे का होगा, चाहे जो भी प्लेयर जीतता, लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 6-0, 6-0 से होगा। ये मतलब ओपन एरा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना 6-0, 6-0 स्कोर लाइन रही है, इतना एक तरफा मुकाबला रहा है। और कहीं ना कहीं जो दर्शक जो कल देखने गए थे वुमेन सिंगल्स का फाइनल, उनको निराशा लगी होगी, क्योंकि उनको ये था कि थोड़ा सा अगर कहीं थोड़ी सी फाइट पुट अप करती, कोई 6-3 कुछ मामला होता या कुछ इस तरीके 6-4 होता, तो लगता कि हाँ चलिए ठीक है, कुछ एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके की स्कोर लाइन थी वो वाकई में मतलब कि बहुत ही वन साइडेड रहा, और इसमें क्रेडिट तो हमें इगा स्वायतेक को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया और पूरे इस विंबलडन की अपनी जो उनकी जर्नी है इस वो उन्होंने मतलब पूरा दबदबा अपना कायम रखा और उन्होंने ये बताया कि क्यों वो इतनी स्ट्रांग प्लेयर हैं। और ये वाकई में मतलब तारीफ करनी पड़ेगी कि अगर उन्होंने इस स्कोर लाइन से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेल दिखाया होगा। और जहाँ तक हम बात करें अल्कराज और सिनर की, देखिए अब तो ये राइवलरी एक ऐसी हो गई है कि एक परमानेंट फिक्स्चर टाइप हो गई, क्योंकि अब है ना हर हम देखते हैं कि किसी भी ग्रैंड स्लैम इवेंट में या किसी भी कोई मेजर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी ये दोनों आमने सामने ही होते हैं। ये अब वो वाला दौर जो राफेल नडाल और जो रॉजर फेडरर और उसके बीच में जोकोविच, जो ये इन तीन में घूमता रहता था। वैसे तो बिग फोर कहते हैं कि एक एंडी मरे को भी लेते हैं, लेकिन वो इन तीनों में घूमता रहता था। और खासतौर से जो शुरुआती राइवलरी थी जिसमें रॉजर फेडरर और नडाल के बीच ही खेले जाते थे मुकाबले, अब वही चीज सेम अल्कराज और सिनर के बीच हो रही है। हर एक ग्रैंड स्लैम में, हर एक मेजर टूर्नामेंट में यही लोग आमने सामने होते हैं, चाहे वो सेमीफाइनल में हो या फाइनल में। और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि 2008 के बाद जब रॉजर फेडरर और राफेल नडाल मिले थे, तो ये पहली बार हो रहा होगा कि एक ही ग्रैंड स्लैम ईयर में फ्रेंच ओपन के जो फाइनलिस्ट हैं वो वापस से है ना सेंटर कोर्ट में विंबलडन में मिल रहे हैं। क्योंकि 2008 में रॉजर फेडरर और 2006, 2007 और 2008 में रॉजर फेडरर और राफेल नडाल विंबलडन का फाइनल खेले थे और उसी साल वो हर ग्रैंड स्लैम के फाइनल में मिले थे। और ये अब 2008 के बाद पहली बार हो रहा है कि जो फ्रेंच ओपन के फाइनलिस्ट जो कि सिनर और अल्कराज थे, वही दोनों वापस विंबलडन के फाइनल में मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी एज अल्कराज के पास इसलिए रहेगी क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है, ग्रास को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन सिनर वर्ल्ड नंबर वन ऐसे ही नहीं बने हैं और हमने देखा है कि जब वो अपना ए गेम खेलते हैं तो किसी भी प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। मुझे लगता है 5 सेट में जाएगा, लेकिन जिस तरीके की हीट, जिस तरीके का वहां पर अभी गर्मी हो रही है, 5 घंटे अगर 4-5 घंटे गेम चला तो देखना पड़ेगा कि कौन प्लेयर जो लास्ट तक टिका रहेगा वही जीतेगा।
जी बिल्कुल, उम्मीद है कि हमें एक बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसा सेमीफाइनल में भी देखने को मिला था हमें एक लंबा मुकाबला। भारत की ज्योति सुरेखा वेनम ने कल स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चौथे चरण में कंपाउंड स्पर्धाओं में भारत को 3 पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने 4 चरणों में 3 स्वर्ण सहित कुल 14 पदकों के साथ तीरंदाजी विश्व कप 2025 के अभियान का समापन किया। एशियाई खेलों की चैंपियन वेनम ने महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार खेल दिखाते हुए रजत पदक हासिल किया। जिस तरह की हैट्रिक रही हम बहुत कम समय में समझना चाहेंगे, एक नया उभरता हुआ सितारा भारत को मिला दीपिका के बाद।
देखिए लॉस एंजलिस ओलंपिक जो 2028 में होने जा रहे हैं उसमें कंपाउंड आर्चरी को शामिल कर लिया गया, और कंपाउंड आर्चर हमेशा से है ना हमें मेडल दिलाते आए हैं, बस बात इतनी सी रह गई थी कि वो ओलंपिक्स में उनका कंपाउंड आर्चरी अभी तक शामिल नहीं थी, सिर्फ रिकर्व आर्चरी ही थी। तो इससे जो ज्योति सुरेखा वेनम जो है वो भारत की स्टार कंपाउंड आर्चर है, और उनके इस तरीके की और अभी कई 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 वर्षों का खेल उनमें बाकी, और हमें बहुत उम्मीद है कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स को आर्चरी से अभी तक हमारे पास कभी कोई मेडल नहीं आ पाया है, रिकर्व आर्चर ने हमेशा डिसअपॉइंट किया। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि लॉस एंजलिस में शायद वो इस कमी को भी पूरा करें और हमें आर्चरी में है ना एक मेडल दिलाएं। हालांकि इस साली वर्ल्ड कप में रिकर्व आर्चर्स ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया और वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाए।
जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जो एक ओलंपिक में दीपिका से एक आस जो थी मेडल की जो हम चूक गए थे वो इसको जरूर पूरा करेंगी सुरेखा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने साइकिल चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि फिट इंडिया ऑन संडे कल अब एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी पहल बन गई है।
साइकिलिंग ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, साइकिलिंग ट्रैफिक का समाधान भी है, बेस्ट एक्सरसाइज है, साइकिलिंग ये फिट रहने का मंत्र है। और इसलिए इस संडे सारे देश में 7000 से अधिक स्थानों पर देश के युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी के मूवमेंट के साथ जुड़े हैं।
वहीं दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में WWE हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली ने भी इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री खली ने कहा कि युवाओं को फिटनेस को प्राथमिकता देनी चाहिए और सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए।
अब थोड़ा इंडिया ना बदल रहा है, इंडिया की सोच भी थोड़ी बदल रही है, और जो आज यहाँ देखने को जोश मिला बच्चों में, हर बच्चों के पास साइकिल है, दिल्ली घूमेंगे, इंडिया गेट जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भी आप 24 घंटे पे आप एसी पे रहते हैं और थोड़ा अगर पसीना निकालेंगे अपने बॉडी से उसके लिए बहुत अच्छा है।
और फिटनेस के इसी मंत्र के साथ श्रोताओं अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। सभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद शक्ति जी।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।